आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बहुत जोरदार आवाज है। टॉमी ऑरेंज का 2018 का उपन्यास देर देर। इसे अमेरिकी साहित्य में एक मील का पत्थर भी माना जाता है, और जब आप इसे पढ़ते हैं तो समझ आता है क्यों। पुलित्जर पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट भी रही है किताब।
बिल्कुल, और इसकी सबसे बड़ी ताकत मुझे लगता है लेखक के अपने अनुभव से आती है। टॉमी ऑरेंज खुद ओक्लाहोमा की शायन और अराबाओ जनजातियों से हैं, पर पले बड़े हैं कैलिफोर्निया के ओकलैंड में।
और यही यही इस किताब की आत्मा है।
हाँ, ये उन मूल निवासी अमेरिकियों की कहानी है जो शहरों में रहते हैं, जिन्हें अर्बन इंडियन कहा जाता है।
ये किताब एक बहुत गहरा सवाल पूछती है कि अपनी जड़ों से, अपनी जमीन से हजारों मील दूर किसी कंक्रीट के जंगल में रहते हुए अपनी पहचान को जिंदा रखने का मतलब क्या है।
ये सवाल और भी गहरा हो जाता है जब हम इसके पीछे का इतिहास देखते हैं।
हाँ, वो 1956 का इंडियन रिलोकेशन एक्ट।
सही कहा, एक सरकारी कार्यक्रम जिसने मूल निवासियों को उनकी पारंपरिक जमीनें छोड़कर शहरों में बसने के लिए एक तरह से उकसाया,
और नतीजा एक पूरी पीढ़ी अपनी संस्कृति से जैसे कट सी गई।
और इसी बिखराव और तलाश के बीच कहानी हमें ऑकलैंड में होने वाले एक बहुत बड़े सांस्कृतिक मेले बिग ऑकलैंड पाउवाउ तक ले जाती है।
और ये पाउवाउ ही वो धुरी है जिसके चारों ओर कहानी घूमती है।
हाँ, एक चुंबक की तरह जो 12 अलग अलग किरदारों को अपनी ओर खींच रहा है। इनकी जिंदगियां अलग हैं, दुख सुख अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है।
और हमें पहले से ही ये एहसास होने लगता है कि जब ये सारी जिंदगियां एक जगह टकराएंगी तो कुछ बड़ा होगा, शायद अच्छा, शायद बहुत बुरा।
तो ये किसी एक हीरो की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे समुदाय की, एक पूरे अनुभव की तस्वीर है।
चलिए तो फिर इन किरदारों से मिलते हैं, क्योंकि इनकी कहानियों के धागों से ही ये उपन्यास बुना गया है।
हाँ, और इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद यह है कि हम इन्हें तीन गुटों में बांट कर देखें।
ठीक है।
ती है, उसका अपना बचपन बहुत तूफानी रहा है। उसने अल्कट्रास द्वीप पर हुए मूल निवासी आंदोलन को अपनी आंखों से देखा है। उस अनुभव ने उसे बहुत सख्त बना दिया है।
तो ओपल अपने परिवार को बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़ी है, लेकिन उसकी बहन जैकी रेड फेदर की कहानी तो बिल्कुल अलग है ना।
एकदम उल्टी, वो तो खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। जैकी ओपल की सौतेली बहन है जो शराब की लत से जूझ रही है, और विडंबना देखिए, वो काम एक नशामुक्ति सलाहकार का करती है।
दशकों बाद वो अपने परिवार से मिलने ओकलैंड लौट रही है।
हाँ, और उसके दिल में डर भी है और एक छोटी सी उम्मीद भी कि शायद इस बार कुछ ठीक हो जाए।
और फिर आती है नई पीढ़ी, ऑरविल रेडफेदर, ओपल का पोता।
हाँ, एक टीनेजर जिसके मन में अपनी संस्कृति को जानने की जबरदस्त ललक है, लेकिन उसे सिखाने वाला कोई नहीं।
और यहीं पे कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ऑरविल अपनी परंपरा कहाँ से सीख रहा है? यूट्यूब से?
हाँ, वो छुप छुप कर वीडियो देखता है और पाववाव का पारंपरिक नृत्य सीखता है।
ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, ये तो आज की सच्चाई का आईना है।
बिल्कुल, ये इस बात का प्रतीक है कि जब जिंदा रहने के सारे पारंपरिक रास्ते बंद हो जाते हैं तो संस्कृति अपना नया रास्ता बना लेती है, चाहे वो इंटरनेट के जरिए ही क्यों ना हो।
ऑरविल की यात्रा अपनी पहचान को शर्मिंदगी से नहीं बल्कि पूरे हक के साथ जीने की यात्रा है।
सही कहा, और दूसरा गुट उन लोगों का है जो अपनी पहचान को बाहर की दुनिया में खोज रहे हैं। हम उन्हें कह सकते हैं कहानीकार और साधक।
अच्छा।
हाँ, इनमें एक है डीन ऑक्सेंडेन, एक नौजवान फिल्म मेकर जिसे शहरी मूल निवासियों की कहानियां रिकॉर्ड करने के लिए ग्रांट मिला है। वो अपनी रिकॉर्डिंग के जरिए लोगों की बिखरी हुई कहानियों को एक जगह जमा कर रहा है।
और एक एडविन ब्लैक भी है।
हाँ, एडविन एक नौजवान जो मोटापे, डिप्रेशन और इंटरनेट की लत से घिरा हुआ है। उसकी दुनिया उसके कमरे तक सिमट गई है, लेकिन पावाओ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है,
क्योंकि वो वहां पहली बार अपने असली पिता से मिलने जा रहा है।
बिल्कुल। और एक किरदार है ब्लू, जिसे उसकी माँ जैकी रेड फेदर ने पैदा होने के बाद गोद दे दिया था।
ओहो।
ब्लू अपनी जड़ों को खोज रही है और वो पावाओ की आयोजन समिति में काम करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका पूरा परिवार भी उसी मेले में आ रहा है।
इन सभी किरदारों की कहानियों में एक तलाश है, एक खालीपन है जिसे वो पावाओ में भरना चाहते हैं। लेकिन एक तीसरा गुट भी है जो वहां कुछ और ही इरादे से आ रहा है,
और यही कहानी में खतरे की घंटी बजाता है।
हाँ,
ये वो लोग हैं जो पावाओ में डकैती करने की योजना बना रहे हैं। इनमें से एक किरदार है टोनी लोनेमैन।
उसकी कहानी मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है,
परछाई रहती है।
समाज उसे अजीब नजरों से देखता है
और वो अपनी पहचान और इज्जत पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
और इसी बेताबी में वो एक डकैती के प्लान में शामिल हो जाता है।
लेखक ने उसे एक ऐसी हालत दी है जिस पर उसका कोई काबू नहीं। क्या ही उसे सिर्फ एक शिकार बनाता है या उसके फैसलों में उसकी अपनी भी कोई भूमिका है?
यही तो इस उपन्यास की खूबसूरती है। वो किसी को भी सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं दिखाता। टोनी एक शिकार है, लेकिन वो अपने फैसले भी खुद लेता है।
और इस साजिश का जो सरगना है, ऑक्टेवियो गोमेज।
हाँ, उसके अंदर गुस्सा और हताशा भरी हुई है। उसे लगता है कि सिस्टम ने उसके साथ धोखा किया है और अब वो पाववाओ से इनाम की रकम लूटकर अपनी और अपने दोस्तों की सारी मुश्किलें हल कर देगा।
वो इसे एक तरह का इंसाफ मानता है।
बिल्कुल।
किताब की बनावट भी बहुत दिलचस्प है। ये रिमेन, रिक्लेम और रिटर्न जैसे हिस्सों में बटी है। लेखक इन सब अलग अलग किरदारों को एक साथ कैसे लाता है, वो तनाव कैसे पैदा करता है?
देखिए, पहले हिस्से रिमेन में लेखक हर किरदार के अकेलेपन और उनकी दुनिया को हमारे सामने रखता है।
उनकी प्रेरणाएं क्या हैं? वो पावावाऊ क्यों जाना चाहते हैं?
हाँ, और यहीं पर ऑक्टेवियो की डकैती का प्लान बनना शुरू होता है। तनाव धीरे धीरे सुलगना शुरू होता है।
और फिर रिक्लेम में?
रिक्लेम में ये अलग थलग धागे एक दूसरे से उलझने लगते हैं। हमें एहसास होता है कि ये सब एक बड़े जाल का हिस्सा है।
जैसे?
जैसे डीन ब्लू का इंटरव्यू लेता है ये जाने बिना कि वो दोनों एक ही समुदाय से हैं। जैकी एडविन के पिता के साथ ऑकलैंड की यात्रा करती है।
और दूसरी तरफ ऑक्टेवियो?
हाँ, और दूसरी तरफ ऑक्टेवियो 3D प्रिंटर से प्लास्टिक की बंदूकें बनाकर अपने खतरनाक प्लान को हकीकत में बदलने की तैयारी कर रहा है।
और इन सब के बीच किताब में एक इंटरल्यूड, मतलब एक मध्य भाग आता है जो एक गोली के नजरिए से लिखा गया है। ये एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला फैसला है।
ये सिर्फ चौंकाने वाला नहीं बल्कि दिल दहला देने वाला अध्याय है। ये महज भविष्य में होने वाली हिंसा की चेतावनी नहीं है।
तो फिर क्या है?
गोली को एक आवाज देकर ऑरेंज इतिहास को एक सक्रिय जिंदा किरदार बना देते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका की नींव में जो हिंसा है वो कोई गुजरी हुई बात नहीं है, वो आज भी हमारे बीच मौजूद है,
बस एक सही मौके का इंतजार कर रही है।
बिल्कुल। वो गोली उस ऐतिहासिक जख्म का प्रतीक है जो कभी भरा ही नहीं, और अब वो उत्सव के बीचों बीच फटने को तैयार है।
और फिर वो मौका आता है, पावाओ, वो जगह जहां सब कुछ जुड़ने वाला था और जहां सब कुछ बिखर जाता है।
कहानी का आखिरी हिस्सा सभी 12 किरदारों को पावाओ में एक साथ ले आता है। शुरुआत में माहौल उम्मीद और जश्न से भरा होता है।
पारंपरिक लिबासों के चमकीले रंग, ड्रम की दमदार थाप
और हर किरदार के दिल में एक नई शुरुआत की आस। ऑरविल पहली बार अपनी बनाई हुई पोशाक पहनकर नाचने के लिए तैयार है। वो पहली बार अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है।
परिवार मिल रहे हैं, एडविन अपने पिता से मिलता है।
हाँ, जैकी और ओपल सालों बाद एक दूसरे से मिलती हैं। एक पल के लिए लगता है कि शायद जख्म भर सकते हैं।
जब मैंने पढ़ा कि गोलियों की आवाज में ड्रम की आवाज खो जाती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
हाँ,
लेखक ने उत्सव के सबसे पवित्र प्रतीक को हिंसा से बदल दिया। वो एक बहुत ही ताकतवर और दिल तोड़ने वाला पल था।
और यही उस पल की त्रासदी है। डकैती का प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है। एक छोटी सी झड़प के बाद पहली गोली चलती है और जश्न का मैदान एक पल में जंग के मैदान में बदल जाता है।
कहानी एक किरदार से दूसरे पर तेजी से कूदती है।
हाँ, और पढ़ने वाला भी उसी दहशत और भगदड़ को महसूस करता है। ड्रम की आवाज जो दिलों को जोड़ रही थी अब गोलियों की आवाज में दब जाती है।
और इस तबाही के बीच किरदारों का क्या होता है?
नाचते हुए ओविल को गोली लग जाती है और टोनी लोनेमन,
हाँ,
शायद पछतावे और अपनी पहचान साबित करने के एक आखिरी पल में एक शूटर का सामना करता है और मारा जाता है।
उसका अंत दुखद है, लेकिन शायद जिंदगी में पहली और आखिरी बार वो खुद को एक हीरो के तौर पर देखता है।
शायद उपन्यास किसी आसान नतीजे पे खत्म नहीं होता बल्कि उस सामूहिक त्रासदी के पल में थम जाता है। जश्न और जुड़ाव की वो जगह एक बार फिर ऐतिहासिक हिंसा का गवाह बन जाती है।
तो इस बहुत ही मार्मिक कहानी के जरिए लेखक किन बड़े मुद्दों पर बात कर रहा है? साफ है कि सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है।
बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा तो आधुनिक शहरी मूल निवासी पहचान का ही है। ये किताब उस घिसी पिटी सोच को तोड़ती है कि मूल निवासी सिर्फ किसी पुरानी तस्वीर में या रिजर्वेशन पे रहते हैं।
ये दिखाती है कि पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
हाँ, इसे शहर में नए तरीकों से दोबारा हासिल किया जाता है, दोबारा बनाया जाता है। ओविल का यूट्यूब से नाचना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
और पीढ़ियों तक चलने वाला दर्द, जिसे इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं, वो भी कहानी के हर पन्ने पर महसूस होता है।
बिल्कुल। ऐसा लगता है कि पावाओं में चली गोली कोई नई नहीं थी, वो तो सदियों से चली आ रही हिंसा की ही एक गूंज थी। उपन्यास यही कहता है कि अतीत कभी मरता नहीं है, वो आज भी किरदारों की लत, उनके डिप्रेशन और उनकी हिंसा में जिंदा है।
लेकिन क्या कहानी सुनाना इसका इलाज है? डीन का प्रोजेक्ट इसी कोशिश का नाम है,
कहानियों के जरिए जख्मों को भरना।
लेकिन क्या ये उपन्यास ये भी नहीं कहता कि सिर्फ कहानी सुनाना काफी नहीं है? क्योंकि डीन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन अंत में हिंसा तो होकर ही रहती है।
और यही इस किताब की ईमानदारी है, वो कोई झूठी तसल्ली नहीं देती। शायद लेखक ये कह रहा है कि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि उनके लिए कोई मरहम नहीं होता, कोई कहानी उन्हें पूरी तरह भर नहीं सकती।
एक और प्रतीक जो बार बार आता है वो है मकड़ी और उसके जाले का।
हाँ, ये रिश्तों, वंश और कहानी बुनने का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे सारे किरदार बिना जाने एक ही बड़े उलझे हुए जाल का हिस्सा हैं। एक धागा खींचने पर पूरा जाल हिल जाता है।
और आखिर में किताब का शीर्षक देयर देयर, ये लेखिका गर्ट्रूड स्टीन के ओकलैंड के बारे में कहे एक मशहूर वाक्य से लिया गया है।
हाँ, देयर इज नो देयर देयर, मतलब वहां अब कोई वहां नहीं है। स्टीन का मतलब था कि उनके बचपन का ओकलैंड अब खत्म हो चुका है।
और टॉमी ऑरेंज इस बात को एक नया और बहुत गहरा मतलब देते हैं।
वो कहते हैं कि मूल निवासियों के लिए तो ये दर्द और भी बड़ा है। उनकी पुश्तैनी जमीन, उनका असली वहां देर, उनसे छीन लिया गया है, तो अब उनके लिए कोई वहां है ही नहीं।
लेकिन साथ ही ये किताब शहर में एक नया वहां बनाने के संघर्ष की भी कहानी है।
हाँ, ये एक ही समय में खोने और पाने दोनों की बात करती है।
तो ये दिल दहला देने वाली कहानी होने के साथ साथ किरदारों के लचीलेपन और उनकी हिम्मत को भी सलाम करती है। ये दिखाती है कि तबाही के बीच भी जुड़ाव और पहचान की खोज हमेशा जारी रहती है।
बिल्कुल, ये हमें सिखाती है कि पहचान कोई खोई हुई चीज नहीं है जिसे किसी म्यूजियम में ढूंढना जाए, बल्कि एक जिंदा सांस लेती हुई हकीकत है जिसे हर पीढ़ी अपने तरीके से, अपने औजारों से खोजती और बनाती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।